नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की और लड़कियों की शिक्षा तथा सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी। महाकुंभ में राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी में देश की समृद्ध विरासत हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। तुर्की में आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हुई। क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। और बैडमिंटन में जकार्ता में आज शाम पीवी सिंधु और लक्ष्य सेन इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 में अपने सिंगल अभियान की शुरुआत करेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर कहा कि इस अभियान में समाज के सभी वर्गों की भागीदारी रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। उन्होंने लोगों से बेटियों के अधिकारों को संरक्षण देने और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की अपील की ताकि बेटियां बिना किसी भेदभाव के प्रगति कर सकें। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत की थी। इसका उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, लड़कियों की शिक्षा सुनिश्चित करना और समाज में लैंगिक समानता को बढ़ावा देना था। पिछले 10 वर्षों में इस योजना से लड़के लड़कियों के अनुपात में सुधार हुआ है, बालिकाओं के स्कूल में नामांकन में वृद्धि हुई है और भ्रूण हत्या तथा भेदभाव के खिलाफ समाज में जागरूकता बढ़ी है। साथ ही छात्रवृत्ति और अन्य सुविधाओं के माध्यम से लड़कियों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिली है। इस योजना ने महिला सशक्तिकरण और सामाजिक सोच बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
सुकन्या समृद्धि योजना की भी 10 वर्ष पूरे हो रहे हैं। केंद्र सरकार ने बताया है कि देश में सुकन्या समृद्धि योजना में 4 करोड़ से अधिक खाते खोले गए हैं। ये योजना 22 जनवरी 2015 को शुरू की गई थी। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का एक हिस्सा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी, वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल आज विभिन्न इलाकों में प्रचार अभियान में शामिल होंगे। मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम के अंतर्गत नमो ऐप के माध्यम से भाजपा के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए आरोप लगाया कि दिल्ली में सत्तारूढ़ पार्टी चुनावों में अपनी हार को देखते हुए रोजाना तरह तरह के वायदे कर रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से रिकॉर्ड मतदान सुनिश्चित करने और राष्ट्रीय राजधानी के हर बूथ पर 50% से अधिक वोट जीतने का लक्ष्य रखने को कहा।
दिल्ली में ये जो संगठन की ताकत है, हर बूथ पे तीन तीन चार चार पीढ़ी के कार्यकर्ता है, यही ये शक्ति इस बार विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को प्रचंड विजय दिलाएगी। मुझे विश्वास है अपने अपने बूथ पर आप जो मेहनत कर रहे हैं उसके चलते आप भारी विजय प्राप्त करने ही वाले हैं।
श्री मोदी ने आप और कांग्रेस पर दिल्ली के लोगों को धोखा देने का आरोप लगाया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज शाम सदर बाजार विधानसभा क्षेत्र के इंद्रलोक इलाके में पार्टी उम्मीदवार के पक्ष में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। श्री केजरीवाल अलग अलग जगह 3 रैलियों को संबोधित करेंगे, जबकि आम आदमी पार्टी के एक अन्य नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान रोड शो करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार में अब 2 सप्ताह से भी कम समय बचा है। ऐसे में राजनीतिक दलों के स्टार प्रचारक अपने उम्मीदवारों के पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए लगातार मैदान में उतर रहे हैं। डोर टू डोर कैंपेन, रोड शो और जनसभाओं के माध्यम से भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं के साथ साथ निर्दलीय भी लगातार अपने मुद्दों को जनता के बीच रख रहे हैं। सत्ता में बने रहने के लिए पुरजोर कोशिश कर रही आम आदमी पार्टी, जहां स्वास्थ्य, बिजली, पानी, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों में अपने कामों का जिक्र अपने प्रचार में कर रही है, वहीं दूसरी ओर भाजपा आम आदमी पार्टी के कथित कुशासन, अधूरे वादों और कथित अनियमितताओं, खासकर शराब घोटाले को उजागर कर पार्टी को सत्ता से हटाने के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। दिल्ली की राजनीति में अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही कांग्रेस अपने चुनावी अभियान में मुख्य रूप से लोगों को शीला दीक्षित सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों और मौजूदा सरकार की कथित विफलताओं को याद दिलाने की कोशिश कर रही है। इस चुनावी लड़ाई में तीनों ही प्रमुख दलों द्वारा एक दूसरे पर राजनीतिक कीचड़ उछालने और व्यक्तिगत हमले भी खूब देखने को मिल रहे हैं। दिवाकर के साथ भानु प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल ने मांग की है कि केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए।
आज हम केंद्र सरकार से भी ये अपील करते हैं कि हमारे देश के असली सुपर पावर भारत के मिडिल क्लास को पहचाने। आज मैं ये ऐलान करता हूँ कि मैं और आम आदमी पार्टी सड़क से लेकर संसद तक मिडिल क्लास की आवाज बनेंगे, उनकी आवाज उठाएंगे, उनके मुद्दों को उठाएंगे।
दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने आम आदमी पार्टी पर शहर में चुनाव प्रचार में पंजाब सरकार के वाहनों का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है।
पंजाब की सारी सरकारी मशीनरी का उपयोग केजरीवाल जी दिल्ली के चुनाव में कर रहे हैं, जो कि नितांत रूप से गलत है। चुनाव के जो मापदंड है वो उसके बिल्कुल उसका उल्लंघन है। उन्होंने किस प्रकार से सरकारी पैसे का और मशीनरी का दुरुपयोग दिल्ली में किया, ये सबके सामने है।
कांग्रेस ने भी आम आदमी पार्टी पर अपना हमला तेज कर दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता अजय माकन ने उन पर दिल्ली सरकार से संबंधित सीएजी रिपोर्ट को पेश करने में बाधा डालने का आरोप लगाया है।
इस वक्त 14 सीएजी की रिपोर्ट एक से एक रिपोर्ट ऐसी है जो कि इतनी भयानक रिपोर्ट है जिसमें भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाए गए। एलजी साहब ने कहा कि केजरीवाल रोक रहे हैं, केजरीवाल कह रहे हैं कि एलजी रोक रहे हैं।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल इस समय कैबिनेट के फैसले की जानकारी दे रहे हैं, आइए सुनते हैं।
और किसानी परिवार है जो जूट बनाते हैं, पश्चिम बंगाल में लगभग 82%, आसाम में 9% और बिहार में 9%। मोटा मोटा इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है जूट का। और ये जूट को जब हम पीडीएस में गेहूं या पैडी खरीदते वक्त बैग्स के रूप में जूट का इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए मोदी सरकार ने रिजर्वेशन रखी है, उससे इस पूरे जूट की खपत अच्छी तरीके से होती है, किसानों को कोई चिंता नहीं रहती है और जब जब जरूरत पड़ती है तो सरकार जूट की प्रोक्योरमेंट करके सुनिश्चित करती है कि किसानों को 100% मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले।
ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है और अब खबर महाकुंभ से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाकुंभ में राष्ट्र स्तर की खादी प्रदर्शनी दर्शकों को आकर्षित कर रही है, एक रिपोर्ट।
महाकुंभ 2025 में खादी इंडिया मंडप खादी पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्थानीय शिल्प, वस्त्र और स्वदेशी उद्योगों में भारत की समृद्ध विरासत को दर्शा रहा है। मंडप परंपरा, स्थिरता और शिल्प कौशल के एकीकरण पर प्रकाश डालता है, जो एकता को बढ़ावा देने और सांस्कृतिक मूल्यों को संरक्षित करने में खादी की भूमिका के बारे में गहन जानकारी प्रदान करता है। महाकुंभ मेले की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में स्थापित यह स्थानीय उद्योगों और टिकाऊ प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। इसमें कुल 152 स्टॉल लगाए गए हैं, जिनमें 98 स्टॉल खादी उत्पादों और 54 स्टॉल ग्रामोद्योग उत्पादों के हैं। इस प्रदर्शनी में भारत के 20 से ज्यादा राज्यों के उत्पाद शामिल हैं। इनमें कश्मीर से लेकर तमिलनाडु और महाराष्ट्र से लेकर नागालैंड तक के उत्पाद शामिल हैं। प्रयागराज से आनंद कुमार की रिपोर्ट के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार।
उत्तर प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल की एक विशेष बैठक आज प्रयागराज में हुई। बैठक में प्रदेश के सभी 54 मंत्री शामिल हुए। इसमें राज्य की प्रगति और लोक कल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मंत्रिपरिषद के सदस्यगण आज पूजा अर्चना के बाद कुंभ में त्रिवेणी संगम में स्नान भी करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा है कि पेय बनाने वाली कंपनी एबी इनबेव भारत में अगले 3 वर्ष में 2500 करोड़ डॉलर का निवेश करेगी। श्री पासवान ने स्विट्जरलैंड में दावोस में विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक के क्रम में कंपनी के साथ एक बैठक की। उन्होंने कहा कि इस निवेश से भारत में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार होगा और आर्थिक प्रगति के साथ रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि निवेश को लेकर प्रधानमंत्री जी की दृष्टि बिल्कुल स्पष्ट है और कारोबारी सुगमता संबंधी नीतियों के कारण निवेशकों को प्रोत्साहन मिला है।
I'm happy the kind of infrastructure that my country has made over the years has given that confidence globally to come to India and invest. My Prime Minister is extremely clear with his policies is the reason why single window clearances is being provided, ease of business is given. That really excites the investors to come and invest.
दावोस में विश्व आर्थिक मंच के पहले दिन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में 6,25,457 करोड़ रुपए के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। एक ही दिन में इतनी बड़ी निवेश राशि हासिल करने का ये एक नया रिकॉर्ड है। जम्मू कश्मीर में राजौरी जिले के बदहाल गांव को संक्रमित इलाका घोषित कर दिया गया है और इस गांव में एक स्थान पर इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई है। इस गांव में पिछले 45 दिन में रहस्यमय कारणों से 17 लोगों की मौत हुई है। पीड़ित परिवारों के मकान सील कर दिए गए हैं और उनके संपर्क में आए परिवारों को भी संक्रमित घोषित किया गया है। जम्मू कश्मीर में सेना ने आज तड़के पाकिस्तान के एक ड्रोन की घुसपैठ की कोशिश नाकाम कर दी। ये ड्रोन पुंछ जिले में नियंत्रण रेखा पार कर भारत में प्रवेश कर गया था। झारखंड के बोकारो जिले में नवाडीह प्रखंड के पेंक नारायणपुर थाना अंतर्गत बांसी गांव के पास जंगल में झारखंड पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है। सूत्रों के अनुसार इस मुठभेड़ में पुलिस के 2 जवान घायल हो गए हैं जबकि 2 नक्सली मारे गए हैं। ये आकाशवाणी है। उत्तर पश्चिमी तुर्की के इसके रिजॉर्ट के एक होटल में कल आग लगने से कम 76 लोगों की मौत हो गई और 51 अन्य घायल हो गए। अधिकारियों ने होटल से लगभग 230 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तुर्की के न्याय मंत्री यिलमाज तुनक ने आग की जांच का नेतृत्व करने के लिए 6 सरकारी वकीलों को नियुक्त किया है। और अब खेल खबरों के साथ हैं प्रशांत।
भारत और इंग्लैंड के बीच 5 20-20 मैचों की श्रृंखला का पहला मैच आज शाम 7 बजे कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। श्रृंखला के 4 अन्य 20-20 मुकाबले चेन्नई, राजकोट, पुणे और मुंबई में होंगे। जकार्ता में आज इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला सिंगल्स मुकाबले में भारत की पीवी सिंधु का सामना वियतनाम की टीएल गुएन से होगा। मैच भारतीय समयानुसार शाम 4:40 पर शुरू होगा। पुरुष सिंगल्स में आज सुबह किरण जॉर्ज कोरिया के जियोन हियोक जिन से हार गए। दूसरी ओर लक्ष्य सेन का सामना जापान के ताकुमा ओबेयाशी से होगा। यह मुकाबला शाम 7:10 पर शुरू होगा। वहीं हॉकी इंडिया लीग के महिला वर्ग में आज सांची राट बंगाल टाइगर्स का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। यह मैच शाम 6 बजे से खेला जाएगा। प्रतियोगिता के पुरुष वर्ग में आज जेएसडब्ल्यू सुरमा हॉकी क्लब का सामना दिल्ली एसजी पाइपर्स से होगा। यह मैच रांची में 7:15 से शुरू होगा। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज बेंगलुरु एफसी का सामना ओडिशा एफसी से होगा। यह मैच बेंगलुरु में शाम 7:30 से शुरू होगा।
मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में घने कोहरे का अनुमान लगाया है। विभाग ने कल जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और हिमाचल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में शीतलहर की स्थिति की भी संभावना व्यक्त की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान ने लड़के लड़कियों के भेदभाव को दूर करने में मदद की तथा लड़कियों की शिक्षा और सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 2 महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। दिल्ली विधानसभा चुनाव में विभिन्न पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के शामिल होने से प्रचार अभियान में तेजी। महाकुंभ में राष्ट्रीय खादी प्रदर्शनी में देश की समृद्ध विरासत हजारों लोगों को आकर्षित कर रही है। तुर्की में आग की घटना में मृतकों की संख्या बढ़कर 76 हुई। क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की श्रृंखला का पहला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैच आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।